ఓం ఓం ఓం. ఆదిగురు భగవాన్ శంకరాచార్యజీ ద్వారా విరచిత్ వేదాంత డిండిమ నామక స్తోత్ర కే ఆధార్ పర్ వేదాంత విచార్ చల్ రహా హై. అభ్యాస్ కే లియే ఛఠా శ్లోకో కా समष्टि व्यष्टि रूपौ दौ पदार्थौ सर्वसम्मतौ समष्टिरीश्वरो व्यष्टिर् जीवो वेदान्तडिण्डिमः జ్ఞానకర్మ పదార్థౌ తౌ వస్తు కర్త్రాత్మతంత్రకౌ జ్ఞానాన్ మోక్షో న కర్మభ్యః ఇతి వేదాంత డిండిమా శ్రోతవ్యాశ్రావ్యరూపౌ దౌ పదార్థౌ సుఖదుఃఖదౌ శ్రోత్రవ్యం బ్రహ్మ నైవాన్యత్ ఇతి వేదాంత డిండిమా చింత్యాచింత్య పదార్థౌ దౌ విశ్రాంతి శ్రాంతిదాయకౌ చింత్యం బ్రహ్మ పరం నాన్యత్ ఇతి వేదాంత డిండిమః. तो पदार्थों का शोधन हो रहा है, पदार्थ का विवेचन हो रहा है. पदार्थों का विभाजन हो रहा है. संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, वस्तु है एक व्यष्टि नाम वाला और दूसरा समष्टि नाम वाला. पदार्थों को हम या तो समष्टि की दृष्टि से देखते हैं या व्यष्टि की दृष्टि से देखते हैं. या तो समष्टि वर्ग में वर्गीकृत करते हैं या व्यष्टि वर्ग में वर्गीकृत करते हैं. सर्वसम्मत हो, व्यष्टि और समष्टि के बारे में किसी भी दार्शनिक संप्रदायकों में विवाद नहीं है. इस प्रसंग में सर्वसम्मतौ, चाहे चार्वाक हों चाहे वह बौद्ध हों चाहे जैन हों, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, चाहे मीमांसा हो चाहे सांख्य हो चाहे योग हो चाहे वेदांत हो चाहे वैशेषिक हो, जो वेद को प्रमाण मानते हैं वेद को प्रमाण मानने और न मानने अर्थ में ही आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा की गई है। भगवान को किस रूप में कौन मानता है, ये अस्तिकता का लक्षण नहीं है और ये भगवान को नहीं मानता ये नास्तिकता का लक्षण नहीं है। व्यवहार में ये बात कह दी जाती है, कह देते हैं सभी लोग ये बड़ा नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, पूजा नहीं करता है, जप नहीं करता है, पाठ नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, बड़ा नास्तिक है। लेकिन हमारा जो दर्शन शास्त्र है वो इतनी मात्रा से नास्तिक नहीं बन सकता। वेद को प्रमाण मानता है कि नहीं, सामान्यतया जीवन मुक्त पुरुष आप कहोगे कि वो नास्तिक होता है। सामान्य परिभाषा के अनुसार तो वो ईश्वर को नहीं मानता, जप नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, किसकी पूजा करेगा वो? लेकिन इसका मतलब वो नास्तिक हो गया ऐसा नहीं। वेद सम्मत वेदांत वाक्यों का आश्रय लेता है और वेदांत वाक्यों के आधार पर वो चिंतन करता है, इसलिए वेद और वेदांत वाक्यों का चिंतन करते रहने पर वह यदि पूजा पाठ भी न करे, जब ध्यान न करे तो भी वह आस्तिक है। लेकिन यहां सर्वसम्मत शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस बात में कोई भी प्रतिपत्ति, कोई विवाद नहीं है कि जगत में पदार्थों का दो वर्ग हैं, एक समष्टि और दूसरा व्यष्टि। सभी को मिलाकर जब किसी पदार्थों को कहा जाता है तो उसको व्यष्टि कह दिया जाता है और किसी एक को उनमें से अलग करके कहा जाता है, नहीं सॉरी, सभी मिलाकर जो पदार्थों को कहा जाता है तो उसको समष्टि कह देते हैं और उसमें से एक को अलग करके जब उसका वर्णन करते हैं तो वह व्यष्टि कहलाता है। दूसरी भाषा में कह दिया जाए, पहले डॉक्टर लोग हुआ करते थे, फिजिशियन, तो वो लोग शरीर के संबंधी सभी रोगों का निदान एक ही डॉक्टर कर लेता था। आज ऐसा कोई डॉक्टर मिलना मुश्किल है। जो डॉक्टर है वो सब स्पेशलिस्ट है। अब सामान्यतया हमारी मान्यता है कि स्पेशलिस्ट ज्यादा ज्ञानी है ना? जो स्पेशलिस्ट होगा वो ज्यादा ज्ञानी है, और जबकि हकीकत यह है कि जो स्पेशलिस्ट है वो कम ज्ञानी है क्योंकि वो व्यष्टि को जानता है, समष्टि को नहीं जानता है। हाँ, एक मजाक कर रहे थे, एक रोगी गया डॉक्टर के यहां, उसके पांव में दर्द था, उसने कहा कि ये तो पांव का दर्द है, तुम पांव के डॉक्टर को दिखाओ। अरे तुम डॉक्टर हो, बोले मैं तो आंख का डॉक्टर हूं, ये पांव के डॉक्टर को दिखाओ। और पांव का डॉक्टर कहां है भाई? पता लगाया, फलानी जगह है। गया, कहा कि पांव का डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब पांव में दर्द है, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि किस पांव में? बोले दाहिने पांव में। आई एम सॉरी, मैं तो बाएं पांव का डॉक्टर हूं। तो तुम दाएं पांव का डॉक्टर को दिखाओ। और दाएं पांव के डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब आप दाएं पांव के डॉक्टर हैं? बोले हां। तो हमारे दर्द हुआ है। बोले घुटने से नीचे है कि घुटने के ऊपर? तो उसने कहा कि घुटने के नीचे। आई एम सॉरी, मैं तो घुटने के ऊपर का दर्द का जानता हूं। अब ये जटिल समस्या है, जमाना इसी तरह चल रहा है। तो अब ये समष्टि और व्यष्टि की परिभाषा यही ना है, जो थोड़े से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आज का जमाना उसको बड़ा मान लिया जाता है। पहले ज्यादा जानता था उसको छोटा माना जाता है आज। ये बात तो हमारे यहां भी लागू होता है। दर्शन में भी यही बात लागू होती है भाई। बहुत से पदार्थों को जो जानता है वह अज्ञानी है। और एक वस्तु को जानता है वो सर्वज्ञ है। ये तो हमारे यहां भी लागू है ना राजेश, एकम विज्ञाते सति सर्वमिदं विज्ञातं भवति। अपराविद्या का जो विषयभूत है उसको, अपराविद्या को जानने वाला तो अज्ञानी है। वेदांत में आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, अपराविद्या को जानने वाला तो अज्ञानी है। क्योंकि अपराविद्या खुद अज्ञान है, रूप है, इसलिए अपराविद्या को जानने वाला अज्ञानी है। अब पराविद्या को जानने वाला ही ज्ञानी है, क्योंकि यया यद अक्षरम अधिगम्यते तत्परा। और जो अक्षर है, अविनाशी है, वही पराविद्या का विषय है और वो एक है। तो एक को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाए और सबको जानने वाला वो मूर्ख ही रहे। तो आजकल यही चल रहा है भाई। ये तो हमारे दर्शन में, वेदांत दर्शन में तो ये अनादिकाल से चल रहा था। तो शंकराचार्य जी वर्गीकरण कर रहे हैं पदार्थों का, वस्तुओं का। समष्टि व्यष्टि रूपौ तौ पदार्थौ सर्वसम्मतौ। समष्टि स्वरो व्यष्टिर जीव। समष्टि रूप को ईश्वर कहते हैं और व्यष्टि रूप को जीव कहते हैं। अब यह पदार्थ शब्द की परिभाषा, जड़ पदार्थ को नहीं लेना। पदार्थ शब्द की परिभाषा यहां चेतना को लेकर ही ये कहा जा रहा है। हालांकि ये व्यष्टि और समष्टि की परिभाषा जड़ ही हेतु है। जड़ पदार्थों में ही व्यष्टि और समष्टि की परिभाषा संभव है, क्योंकि चेतना में व्यष्टि और समष्टि की परिभाषा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? चेतना निरवयव है। जो वस्तु निरवयव है वहां व्यष्टि और समष्टि की परिभाषा लागू नहीं हो सकता। और जो वस्तु सावयव हैं वहीं पर समष्टि और व्यष्टि की परिभाषा लागू होती है। जड़ पदार्थ सावयव हैं, इसलिए जड़ पदार्थों में ही व्यष्टि और समष्टि की परिभाषा होगी, लेकिन ये उपाधि के चलते, उपाधि सावयव हैं वेदांत के दृष्टि में, उपाधि सावयव होने के कारण उन्हीं उपाधियों को ही यहां व्यष्टि उपाधि और समष्टि उपाधि ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए। हालांकि यहां उपाधि शब्द का प्रयोग नहीं किया है, और यहां उपहित का भी परिभाषा नहीं की, हालांकि परिभाषा में उपहित का ही संकेत हुआ है। अब यह वाच्यार्थ से ही संभव होगा। उपाधि में सावयव हैं, उपाधि सावयव हैं, सावयव होने के कारण व्यष्टि और समष्टि की परिभाषा में आ जाएंगे, परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, और उपाधि व्यष्टि समष्टि होने के चलते उपहित में ईश्वरता और जीवता की परिभाषा हो गई चेतना में, अन्यथा चेतना निरवयव होने के कारण चेतना तो व्यष्टि और समष्टि हो ही नहीं सकता है। अब समझ रहे हैं बात, ये आसान है, मुझे लगता है कि हम समझा रहे हैं तो सबको समझ में आ रहा होगा। समझाते समय हमको समझ में आ रहा है, इसीलिए हमको लग रहा है कि सभी समझ रहे हैं, और कभी कभी समझाते समय खुद को समझ में नहीं आता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। है उपहित चैतन्य उपाधि उपहित, ये मठ उपाधि है तो आकाश उपहित है, मठाकाश उपहित है, उपाधि के अंतर्गत जो आवे वो उपहित है, शरीर उपहित चैतन्य कहते हो ना, घटो उपहित आकाश, क्या हुआ घटाकाश, मठ उपहित आकाश मठाकाश, अब उपहित कहो अवच्छिन्न कहो, एक पारिभाषिक शब्द है, घटावच्छिन्न आकाश कहो, घटोपहित आकाश कहो, मठावच्छिन्न आकाश कहो या मठ उपहित आकाश कहो, पारिभाषिक शब्द है, लेकिन आभास और उपहित में अंतर है। आभास और उपहित में अंतर है, आभास उपहित का पारिभाषिक नहीं होगा। जलो उपहित आकाश, वह आकाश सत्येन सत्य होगा, अव्यवहारीयमान होगा वो आकाश, जल अवच्छिन्न आकाश, आकाश सत्येन सत्य होगा और व्यवहारीयमान होगा, व्यवहार का कारण बन जाएगा, लेकिन जल प्रतिबिंबित आकाश जलाकाश वह मिथ्या हो जाएगा, वो व्यवहार का विषय नहीं बनेगा, व्यवहारीयमान नहीं होगा, प्रतीत होगा लेकिन व्यवहारीयमान नहीं होगा। प्रातिभाषिक सत्ता जलाकाश की है, यानी जल प्रतिबिंबित आकाश की है, और व्यावहारिक सत्ता जल उपहित आकाश की है, यानी जल अवच्छिन्न आकाश की है। थोड़ा कठिन हो गया होगा, है ना? घटावच्छिन्न आकाश उसकी व्यावहारिक सत्ता है, समझ रहे हैं ना? और घड़े के अंदर पानी भरा हो और पानी में आकाश का प्रतिबिंब हो तो जलाकाश हो गया, वह फिर प्रातिभाषिक होगा, व्यावहारिक सत्ता नहीं होगी। तो घड़े के अंदर ही दो आकाश हैं, एक व्यावहारिक सत्ता वाला आकाश घटाकाश और दूसरी प्रातिभाषिक आकाश जलाकाश। इसी तरह यहां कह रहे हैं कि व्यष्टि और समष्टि में दोनों की एक ही सत्ता है। ऐसा नहीं कि समष्टि व्यावहारिक सत्ता वाला हो और व्यष्टि प्रातिभाषिक सत्ता वाला हो, ऐसा नहीं है। सभी घड़ों में अवच्छिन्न हुआ हुआ, उपहित हुआ हुआ आकाश, वो समष्टि आकाश कहलाएगा, और एक घड़े में अवच्छिन्न हुआ हुआ आकाश व्यष्टि आकाश कहलाएगा। लेकिन दोनों आकाश व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, समझे कि नहीं? जैसे महाकाश व्यावहारिक सत्ता वाला इसलिए है कि वहां पक्षी उड़ सकते हैं, प्लेन उड़ सकते हैं, बादलें आ सकती हैं, है ना? धूल आंधी वेरी आ सकता है। लेकिन मठाकाश के अंदर व्यावहारिक सत्ता नहीं है। आंधी वेरी आ सकता है कि नहीं? प्लेन उड़ सकता है कि नहीं? पक्षियां उड़ सकते हैं कि नहीं? बादलें आ सकती हैं कि नहीं? हाँ, फिर भी वो व्यावहारिक है, क्योंकि आप बैठ सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, भोगा कर सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हो, व्यावहारिक है। तो समष्टि आकाश भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, व्यष्टि आकाश भी व्यावहारिक सत्ता वाला है। प्रातिभाषिक आकाश यहां नहीं है। हां, अब इसी में कहीं तुम लोटे में पानी भर कर ले आओ और उसके अंदर जो आकाश की प्रतीति होगी वह केवल प्रातिभाषिक होगी, उस पानी के अंदर के आकाश में जो तुम योगा कर सकते हो, न सत्संग कर सकते हो, न तुम बैठ सकते हो, न मेघ आ सकते हैं। इसीलिए समष्टि व्यष्टि रूपौ द्वौ पदार्थौ सर्वसम्मतौ, समष्टि ईश्वरो व्यष्टि जीवा। ईश्वर और जीव दोनों की सोपाधिकता होने के कारण ये दोनों व्यावहारिक सत्ता वाले हैं। अब ध्यान रखना, संकोच नहीं करना बोल देने में, दोनों व्यावहारिक सत्ता वाले हैं। समष्टि देह उपाधि वाला उपहित चैतन्य है ना? समष्टि देह उपाधि वाला उपहित चैतन्य, समष्टि उपाधि के सहित वह ईश्वर कहलाता है। व्यष्टि देह वाला देहोपाधि चैतन्य, व्यष्टि उपाधि सहित वह जीव कहलाएगा। दोनों की फिर शास्त्रीय सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है। जैसे कि आप लोग महावाक्य के बारे में वेदांत के श्रवण में सुन रहे हो, महावाक्य के द्वारा लक्षणावृत्ति से भागत्याग कर लेने पर जीव की व्यष्टि उपाधि और ईश्वर की समष्टि उपाधि का जब परस्पर विरोध होने पर जब बात कर देते हो तो दोनों की चेतना में एकता है, चेतना में एकता, और वो जो चेतना में जो एकता है वह न प्रातिभाषिक है न व्यावहारिक है, वह फिर पारमार्थिक होगा। ईश्वर जीव की एकता लक्षण जो स्वरूप है वह पारमार्थिक सत्ता स्वरूप वाला है, और ईश्वर और जीव की जो भिन्नता है व्यष्टि और समष्टि ये व्यावहारिक है। अब उपासना के लिए है, प्रार्थना के लिए है, सृष्टि के लिए है, स्थिति के लिए है, संहार के लिए है, प्रेरक के रूप में ईश्वर हो जाएगा, भोक्ता के रूप में तुम हो जाओगे। इसलिए मुंडक उपनिषद में कहा ये, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा,
है। और जगत उपहित चैतन्य, देह उपहित चैतन्य, वृष्टि देह उपहित चैतन्य, सवृष्टि देह उपहित चैतन्य, ईश्वर जीव और भोग्य पदार्थ, ये त्रिविध पृथक पृथकता, ये व्यावहारिक सत्ता है। इसलिए द्वैत या भेद सिर्फ औपाधिक हैं, औपाधिक होने के नाते वह केवल व्यावहारिक हैं, शास्त्रीय हैं। व्यवहारिक और वेदांत तो व्यवहार और शास्त्रीय में एक ही कैटेगरी में रखता है, एक ही वर्ग में रखता है। ये बात यहां शंकराचार्य जी ने नगाड़ा पीटते हुए सुनने वालों को सुना रहे हैं, और जो नहीं सुनने वाला है उसको क्या करोगे, है ना? सुनने वाला तो सुन लेगा, और नहीं सुनने वाला होगा तो सुनेगा नहीं, तो काम की चीज सुन जाएगा, सुनेगा। कान होने मात्र से सभी चीज कोई नहीं सुनता है ना, सिलेक्शन करता है सुनने में भी, मुझे क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। आप अपने घर से तो आए हो, तो उस बीच में टैक्सी का, बस का, ट्रेन का, काग, कबूतर, अनेक प्रकार के पक्षियों का बहुत सी आवाज आपने सुनी, सुनी है ना? बताइए कौन कौन सी आवाज सुनी है? सुनी नहीं है, क्योंकि वो आपको मतलब नहीं था इसलिए नहीं सुना है। कान होने मात्र से थोड़ी सुना जाता है। तो कान में शब्द पड़ गए इतनी मात्रा से श्रवण नहीं होता है। कल पंचदशी के श्लोकों की परिभाषा आप लोगों ने सुनी है ना, श्रवण और मनन कहा है ना। कान में शब्द पड़ गए इतनी मात्रा से श्रवण नहीं होगा, उस शब्द के अर्थबोध हो तब आपको श्रवण कहलाएगा। शब्द का अर्थबोध नहीं हो रहा है, केवल कान और शब्दों का सन्निकर्ष हो रहा है इतनी मात्रा से, तो श्रवण नहीं होगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थबोध तो हो नहीं रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो रहा है, तद्जन्य ज्ञान नहीं हो रहा है, समझ रहे ना? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो रहा है, इंद्रियों का और अर्थ का सन्निकर्ष तो हो रहा है, लेकिन तज्जन्य ज्ञान नहीं हो रहा है। तज्जन्य ज्ञान हो जावे तब जाकर आपको श्रवण पूरा होगा, अर्थबोध हो जाए तब। समष्टि व्यष्टि रूपौ दौ पदार्थौ सर्वसम्मतौ, समष्टि ईश्वरो व्यष्टिर जीवो वेदांत डिंडिमः। उसी बात को और आगे कह रहे हैं, ज्ञान कर्म पदार्थौ दौ वस्तु कर्त्रात्म तंत्र कौ, ज्ञानान मोक्षो न कर्मभ्यः इति वेदांत डिंडिमः। ज्ञान और कर्म, शंकराचार्य जी ने उपासना को कर्म की ही अंतर्भाव करके द्वै वर्ग में रख लिया है, समझे नहीं? हालांकि उपासना भी तो है ना, ज्ञान कर्म उपासना। उपासना मानसिक कर्म कर्म होने के कारण इंद्रिय कर्म और मानसिक कर्म दोनों कर्म होने के कारण उपासना को भी कर्म की ही अंदर अंतर्भाव कर दिया है शंकराचार्य जी ने। जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, आप सुनने का काम कर रहे हो, मैं बोलने का काम कर रहा हूं, आप क्या काम कर रहे हो? आप सुनने का काम कर रहे हो, मैं बोलने का काम कर रहा हूं। ये दोनों काम इंद्रिय लेवल पर हो रहा है। मैं बाकी इंद्रिय से बोल रहा हूं और आप श्रोत्री इंद्रिय से सुन रहे हैं। आप साधन प्रयोग कर रहे हैं श्रोत्री इंद्रिय का, मैं साधन प्रयोग कर रहा हूं वाकी इंद्रिय का, और वाकी इंद्रिय साधन को प्रयोग करके मैं शब्द बोल रहा हूं, तो श्रोत्री इंद्रिय साधन को प्रयोग करके आप शब्द सुन रहे हो। ये तो इंद्रिय कर्म हो गए। इसके अलावा उपासना मानसिक कर्म है। मैं ध्यान करूंगा उपासना करूंगा वो भी मानसिक होगा, और आप ध्यान करेंगे उपासना करेंगे तो भी मानसिक होगा। इसलिए उपासना को भी शंकराचार्य जी ने यहां कर्म के अंदर ही अंतर्भाव करके ज्ञान और कर्म केवल ये दो पदार्थ निश्चय किया है। ज्ञान कर्म पदार्थ दौ वस्तु कर्त्रात्म तंत्र कौ। दोनों पदार्थ कैसे हैं? एक वस्तु तंत्रात्मक है और दूसरा कर्तृ तंत्रात्मक है। ये संस्कृत का शब्द प्रयोग हो रहा है। कर्म कर्ता के अधीन है, कर्म करने वाला स्वतंत्र है। कौमुदी पढ़ते समय भी हम लोग पढ़ते रहे ना, कर्ता स्वतंत्र है, वो करना चाहे विधिवत नियमानुसार कर सकता है और नियम विपरीत भी कर सकता है, और उसकी इच्छा उसकी मर्जी तो नहीं भी कर सकता है। कर्म इसलिए व्यक्ति तंत्र कर्तृतंत्र है। कर्म मैं कर्म कर भी सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, उल्टा भी कर सकता हूं। आप स्वतंत्र हैं कि नहीं है? आप प्रेमपुरी आश्रम में 7:30 से 8:30 प्रवचन सुनना, ये आप स्वतंत्र हैं कि नहीं बोलो? आप 7 से 7:30 से 8:30 बजे सुनना आ भी सकते हो है, और नहीं भी आ सकते हो। आपकी इच्छा हुई तो नहीं भी आ सकते हो ना, आना ही पड़ेगा, जरूरी है, नहीं भी आ सकते। और ठीक है, प्रवचन यहां आकर ना सुनो तो घर में सुन लो इंटरनेट से, और उल्टा भी कर सकते हो, प्रवचन की जगह गीत सुन सकते हो, और उल्टा भी कर सकते हो कुछ भी ना सुनकर रजाई ओढ़कर। अब तो क्या रजाई ओढ़ोगे, बंबई में तो कोई रजाई नहीं ओढ़ता है, लेकिन दरवाजा बंद करके सो तो सकते हो है? कुछ भी कर सकते हो आप स्वतंत्र हो। इसको कहते हैं कर्तृतंत्र। कर्ता में निर्भर करता है कौन? कर्म। कर्ता चाहे तो नियम पूर्वक करे, कर्ता यदि चाहे तो ना करे, कर्ता चाहे तो विपरीत करे। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है। ज्ञान वस्तुतंत्र है, कर्तृतंत्र नहीं है। आंख ठीक हो, रोशनी हो और पदार्थ सामने हो, और आपके आंख खुले हों, रोशनी हो, पदार्थ सामने हो, साधक सामग्री सब तैयार होने पर, साधन सामग्री सब कुछ तैयार होने पर आपको पदार्थ का ज्ञान होगा ही होगा। आंख खोलने पर मैं नहीं देखूंगा, स्वतंत्र हैं आप, स्वतंत्र हैं। आंख खोलने पर मैं नहीं देखूंगा, आंख खुलने पर दिखेगा दिखेगा। मैं विपरीत देखूंगा, तुम्हारे कहने से विपरीत दिखेगा ये। क्योंकि ज्ञान में पदार्थों को स्वरूप बदलने की क्षमता नहीं है। ज्ञान ऐसा है कि जो पदार्थ जैसा है वैसा ही देखना पड़ेगा, जो पदार्थ जैसा वैसा ही जानना पड़ेगा, इतना ही है। ज्ञान की साधना सब कुछ भूमिका करके सामग्री आपको जुटाना पड़ेगा। यहां तक तो कर्तृतंत्र है। जैसे आप कोई काम करने के लिए सब सामग्री जुड़ा लो, सब कुछ साधन सामग्री और जुड़े हुए हैं, फिर भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि चाहे साधन जुड़ने पर भी चाहे तो करें चाहे ना करें। घर में गैस का सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है, रसोई में पानी है, हैं? बाजार से आप उस आम भी लाए हो, आटा भी है, नमक मिर्ची मसाला भी है, तेल भी है, नून तेल है, सब कुछ है, सब कुछ तैयार है। आप चाहो तो रस और पूरी दोनों बना सकते हो। सकते हो सकते नहीं बोलो, सकोगे कि नहीं? आटा भी है, तेल है, सब कुछ है, तो रस भी बनाओ पूरी भी बनाओ चाहो तो। और आप चाहो नहीं नहीं खाली पूरी बना लूंगा, आम तो ऐसे पीस पीस खा लूंगा, आप स्वतंत्र हो कि नहीं बोलो? रस बनाओ चाहे न बनाओ स्वतंत्र हो आप। आप कहोगे नहीं, जब सब कुछ होने पर भी फ्रिज में रख देता हूं, कल खाऊंगा, आज नहीं, देखा जाएगा। आप स्वतंत्र हो इसमें। सब सामग्री तैयार होने पर भी आप करें चाहे न करें, आप स्वतंत्र हो। लेकिन सब सामग्री तैयार होने पर ज्ञान हो चाहे न हो, ये स्वतंत्रता नहीं है, ज्ञान होगा ही होगा। सामग्री तैयार होने पर तो ज्ञान होगा। श्रवण मनन और निधिध्यासन तुम कर लो और उसके बाद मैं ब्रह्म को नहीं जानूंगा, तो वो ये नहीं होगा, नहीं चलेगा। मेरी मर्जी है, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, ये नहीं चलेगा। वो होगा ही होगा बस। इसलिए वो क्या है? वस्तुतंत्र है। ज्ञान वस्तुतंत्र है, कोई बात यहां स्पष्ट कर रहे हैं। ज्ञान कर्म पदार्थौ दौ वस्तु कर्त्रात्मतंत्र कौ, ज्ञानान मोक्षो न कर्मभ्यः। कर्म करके उसका फल मैं नहीं भोगूंगा तो तुम स्वतंत्र हो। कर्म करो, सभी कर्म का फल मैं नहीं भोगूंगा, मुझे नहीं चाहिए, तब फिर उस कर्म को ईश्वर अर्पण कर दो, तुम बच गए, तुम स्वतंत्र हो, है कि नहीं बोलो? यदि तुमने कर्म कर ली, नहीं इस कर्म का फल मुझे चाहिए, तो तुम्हें प्राप्त भी होगा। नहीं 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 नहीं, इस कर्म का मैं, किसी भी कर्म का मैं फल नहीं भोगूंगा, तो कर्म करो, ईश्वर को अर्पण कर दो, तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा, क्योंकि फल भोगना नहीं पड़ेगा ईश्वर अर्पण कर देने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं होगा। श्रवण मनन निधि ध्यासन कर लो, उसके बाद मैं ब्रह्म को नहीं जानूंगा, तो वो ज्ञान तुम दूसरों को अर्पण कर दो। मुझे ब्रह्म को नहीं जानना है, आत्मानंद जानते हो तो वो ज्ञान मैं उनको दे देता हूं, चलेगा? है? ज्ञान तुमको मनन निधि ध्यासन के बाद जो ज्ञान तैयार होगा, वह ज्ञान से जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव होगा ही होगा। वो ज्ञान होने के बाद तुम कहोगे कि नहीं नहीं एक नहीं होंगे, हम अलग ही रहेंगे ईश्वर से, तो फिर काहे को निधि ध्यासन करने आए थे? ज्ञान वस्तुतंत्र है, कर्तृतंत्र नहीं है, वहां स्वतंत्रता नहीं है। तुम्हें जानना ही पड़ेगा, जीव ब्रह्म की एकता होगी ही होगी, तुम लाख कोशिश करो। कोई बात यहां कहते हैं ज्ञानन मोक्ष, ज्ञान यदि तैयार हो गया तो मोक्ष होगा ही होगा, तुम्हारे न चाहने पर भी मोक्ष होगा ही होगा। लेकिन फल, कर्म का फल तुम चाहोगे कि मिलेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं मिलेगा। फल भोगना नहीं है तो अर्पण कर दो कर्म ईश्वर को। यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम संभूतबाराधनम, अर्पण कर दो। महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं ना बनिया का। एक व्यापारी था, पता नहीं कहीं कुछ शुभ कर्म कर लिया, शुभ कर्म का फल आ गया स्वर्ग। शुभ कर्म का फल तो स्वर्ग जाना ही था, जीवन भर अशुभ कर्म किया तो पता नहीं कहां से भूल के उसने शुभ कर्म कर लिया था। तो देवदूत और यमदूत दोनों आ गए, तो इसने जीवन भर अशुभ कर्म किया, इसको नरक ले जाएंगे। देवदूतों ने कहा कि नहीं नहीं, एक कर्म इसने शुभ किया है, इसलिए उस कर्म का फल स्वर्ग, उसको ले जाना है। तो पहले हम स्वर्ग ले जाएंगे, फिर उसके बाद तुम नरक ले जाना। यमदूतों ने कहा कि नहीं, इसने ज्यादा अशुभ कर्म किया, पहले हम नरक ले जाएंगे, तुम स्वर्ग ले जाना। दोनों के बीच में विवाद हो गया, तो बोले इसी से पूछ लेते हैं, पहले कहां जाना है बोल। बोले उसने विचार किया, बनियाना था है। कोई बनिया हो तो नहीं, बुरा नहीं मानना, बनियाना है, विचार किया, फायदा किस में है, विचार किया, देखो ज्यादा पाप है और ज्यादा समय नरक रहना ही है, तो एक काम करो, ये कर्म का जो फल है, स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो, ये फल हम भोगे बिना अर्पण करना चाहते हैं, किसी को दान देना चाहते हैं। इतनी सी स्वर्ग का फल भोगकर करेंगे क्या? सारे जीवन तो नरक में बहना है, इसलिए हम ये अर्पण करना चाहते हैं, संभव है कि नहीं? देवदूत ने कहा ये तो संभव है भाई, तुम चाहो अर्पण करना तो संभव है, तो फिर हम अर्पण करेंगे, खोज के लाइए किसको चाहिए। तो बोले कोई व्यक्ति स्वर्ग का पुण्य दान देना चाह रहा है, लेना चाहोगे? बोले कौन नहीं चाहेगा, बोलो। हां हां, ओम तस्सत तस्सत तस्सत, संकल्प किया, स्वर्ग का जो पुण्य था वो बनिया ने दान कर दी। दान करते ही देखते देखते ब्रह्मलोक से माने वैकुंठ से विष्णु के दूत पहुंच गए वहां। हाँ, बोले क्यों? हम इसको वैकुंठ ले जाएंगे। यमराज के दूत कहने लगे हम इसको नरक ले जाएंगे। तुम वैकुंठ कैसे ले जाओगे? स्वर्ग तो इसने दान कर दिया, स्वर्ग जाने लायक नहीं है। बोले स्वर्ग दान कर दिया इसीलिए तो वैकुंठ जाने लायक हो गया, बनिया तो बड़ा बेनिफिट हो गया उसको, तो वो तो पहले बुद्धि लगा चुका था, पढ़ से स्वर्ग की तैयारी। अब वो कहने लगा कि मैं स्वर्ग माने वैकुंठ को भी दान कर देना चाहता हूं, बोलो कोई है लेने वाला? जीवन भर नरक तो रहना ही है, और दो दिन के लिए दो घंटे के लिए वैकुंठ क्यों जाना है, मैं उसको भी दान कर देता हूं। व्यापारी तो फायदा ही फायदा देख रहा है, तो वैकुंठ दान कर दिया। तब तो साक्षात शिवलोक के शिवगण पहुंच गए, तो चलो शिवलोक है। यहां तक कि शिवलोक दान कर दिया तो सीधे ब्रह्मलोक है। बोले हम उसको भी दान कर देंगे, तो अब क्या करोगे? तब तो फिर ब्रह्मलोक भी जो दान करेगा उसको अब नरक जाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। तो उसने सारा पाप कर्म नरक का भोगे बिना ही माइनस कर दिया। कितना फायदा, कितना बुद्धि लगाए, देखो है? तो वो तो दान कर सकते हो ना अब। कर्म में तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन जब ब्रह्मलोक आदि दान कर दिया तो उसको स्वरूप साक्षात्कार होगा ही होगा। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन, ब्रह्मलोक दान नहीं करता तो हो सकता है वो आ जाता है। अब ब्रह्मलोक दान कर दिया तो ब्रह्मलोक ही नहीं रहा है, तो अब उसको तो इतना दान करने का फल तो यही होगा, चित्त शुद्ध हो गया, ईश्वर कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गया साक्षात। अब ब्रह्म के अलावा तो और क्या है? बोलो। सब कुछ अध्यारोप का उसने अपवाद कर दिया है, मर्त्यलोक अध्यारोप था उसका अपवाद कर दी, स्वर्गलोक अध्यारोप था उसका अपवाद कर दिया, शिवलोक अध्यारोप था उसका अपवाद कर दिया, ब्रह्मलोक अध्यारोप था उसका भी अपवाद कर दिया, तो अब नरक लोक अध्यारोप था उसका अपवाद तो अपने आप ही हो गया कि नहीं? बोलो। उसके लिए तो है, अब सभी अध्यारोप का अपवाद होगा, उसको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तो और क्या होगा? बोलो। तो ज्ञानान मोक्षः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।